दानियल की पुस्तक संख्या 51।
पालमोनी दानियल और प्रकाशित वाक्य में समय और भाषा के स्वामी का अनावरण। दानियल अध्याय 8 पद 13 और 14 में जिसका वर्णन वह विशेष पवित्र जो बोल रहा था के रूप में हुआ है, वो पालमोनी के रूप में मसीह ही है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मसीह की पहचान अल्फा और ओमेगा के रूप में की गई है, जो अन्य अद्भुत सत्यों के साथ साथ मसीह को अद्भुत भाषाविद भी दर्शाता है। और दानियल तथा प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें मिलकर मसीह को समय और भाषा के स्वामी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। यह मानवीय क्षमता से परे है समझना कि इसका महत्व और गहराई क्या है कि पालमोनी भेदों का गणनाकर्ता के रूप में मसीह अपने चरित्र के उस गुण का परिचय उन्हीं दो पदों में देता है जो एडवेंटवाद का केंद्रीय स्तंभ स्थापित करते हैं। परंतु जिन भेदों को भेदों का गणनाकर्ता प्रकट करना चुनता है, उन्हें पहचानना और उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।
गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ही की है, परंतु जो बातें प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारी और हमारे पुत्रों की हैं, ताकि हम इस व्यवस्था की सब बातों पर चलें। व्यवस्था विवरण 29:48।
एक प्रकट किया गया रहस्य यह है कि गुप्त बातों का गणक पलमोनी वही वह निश्चित संत जिसने कहा है, और जिन दो पदों में वह स्वयं को प्रकट करता है उनमें एडवेंटवाद का केंद्रीय स्तंभ पहचाना जाता है। उन्हीं दो पदों में अद्भुत गणक उस ज्ञान की वृद्धि की पहचान करता है जिसकी मुहर उसने यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में 1797 में खोल दी। उन्हीं दो पदों में ज्ञान की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाले मिलर के स्वप्न के रत्न पलमोनी के हाथ के निर्देशन से हबक्कूक के दो पट्टों पर प्रकाशित किए गए।
तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते हुए सुना, और उस पवित्र जन ने जो बोल रहा था एक अन्य पवित्र जन से कहा, नित्य बलिदान और उजाड़ देने वाले अपराध के विषय की ये दर्शन कथा कब तक रहेगी कि पवित्र स्थान और सेना दोनों पैरों तले रौंदे जाए? और उसने मुझसे कहा, 2300 दिनों तक, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। दानियल 8:1-14।
जब दानियल ने बाइबल की भविष्यवाणी के राज्यों का भविष्य सूचक दर्शन प्राप्त किया और फिर पद 13 और 14 में स्वर्गीय संवाद सुना, तब उसने उस दर्शन को समझने का प्रयास किया।
और ऐसा हुआ कि जब मैं अर्थात मैं दानियल दर्शन देख चुका था और उसके अर्थ की खोज कर रहा था, तब देखो मेरे सामने मनुष्य के समान रूप का एक व्यक्ति खड़ा था, और मैंने उलाई के तटों के बीच से एक मनुष्य की आवाज़ सुनी जो पुकार कर कह रही थी, गब्रियल इस मनुष्य को ये दर्शन समझा दे। दानियल 8:15-16।
वो दर्शन जिसे दानियल समझने का प्रयास कर रहा है छाजोन वाला दर्शन है, पर मारे वाला दर्शन वही है जिसे दानियल को समझाने के लिए गैब्रियल को कहा गया है। प्रत्येक तथ्य का अपना महत्व है, और यदि ये तथ्य छूट जाए तो इस खंड की संरचना और रूपरेखा मूलतः नष्ट हो जाती है। 15वें पद में जब दानियल छाजोन वाले दर्शन को समझने की कोशिश करता है, तब मारे छिपा रहता है, पर फिर भी निरूपित होता है, क्योंकि अपीयरेंस ऑफ अ मैन गैब्रियल में हिब्रू शब्द मारे का अनुवाद अपीयरेंस किया गया है। पद 15 में वे दोनों शब्द उपस्थित हैं जिनका अनुवाद दर्शन किया गया है। दानियल पद 15 में छाजोन को समझना चाहता है, पर पालमोनी पद 16 में गैब्रियल को आदेश देता है कि वो दानियल को मारे समझाए। इन दोनों पदों की रूपरेखा उद्देश्यपूर्ण है और इन दोनों शब्दों के संबंध और भेद को रेखांकित करती है। दानियल को मारे है समझाने का आदेश गैब्रियल को पलमोनी देता है, क्योंकि जो गैब्रियल को आदेश देता है वही है जो जल के ऊपर खड़ा है, और गैब्रियल ने उसकी आवाज़ सुनी, उलाई के किनारों के बीच एक मनुष्य की आवाज। किनारों के बीच बहने वाली नदी उलाई ही है, और शास्त्रों में जल के ऊपर खड़ा होने वाला मसीह है। इस तथ्य के साथ ये तथ्य भी जुड़ा है कि मसीह महादूत के रूप में वही है जो स्वर्गदूतों को आदेश देता है। किनारों के बीच की वह आवाज पद 13 में वह विशिष्ट पवित्र जन की आवाज है, और उसी का वचन गैब्रियल को आदेश देता है कि वो दानियल को मारे है दर्शन समझाए। दानियल के अध्याय 12 में मसीह फिर से नदी के किनारों के बीच है। अध्याय 12 में वो सन के वस्त्र पहने हुए है, और वो उसकी शपथ खाता है जो सदा जीवित है।
परंतु तू हे दानियल, इन वचनों को बंद कर और पूरी नस्तक पर मुहर लगा दे। अंत के समय तक बहुत लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। तब मैं दानियल ने देखा और देखो वहां दो और खड़े थे, एक नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर, और उनमें से एक ने उस सन के वस्त्र पहने हुए मनुष्य से जो नदी के जल के ऊपर था कहा, इन अद्भुत बातों का अंत कब तक होगा? तब मैंने उस सन के वस्त्र पहने हुए मनुष्य को जो नदी के जल के ऊपर था सुना। उसने अपना दाहिना और बायां हाथ आकाश की ओर उठाया और जो सदा जीवित है उसकी शपथ खाई किए एक समय, समयों और आधा समय तक होगा। और जब वो पवित्र लोगों की शक्ति को तितर बितर करने का काम पूरा करेगा तब ये सब बातें पूरी हो जाएंगी। दानियल 12:4-2।
वो मनुष्य जो सन का वस्त्र पहने हुए था जो नदी के जल के ऊपर था, उसने अपना दाहिना और बायां हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाई जो सदा जीवित है, और वही मनुष्य है जिसने अध्याय 8 में गब्रियेल को आज्ञा दी। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 10 में मसीह ने भी अपना हाथ उठाया और उसकी शपथ खाई जो सदा जीवित है, परंतु वहां वो जल और भूमि दोनों पर खड़ा है।
और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसने अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाई जो युगानुयुग जीवित रहता है, जिसने स्वर्ग और उसकी सब वस्तुओं को और पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को और समुद्र और उसकी सब वस्तुओं को सृजा है, कि अब फिर विलंब न होगा। प्रकाशित वाक्य 10:5-6।
प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय का शक्तिशाली स्वर्गदूत पालमोनी है, जिसने अध्याय 8 में नदी के दोनों तटों के बीच से गब्रियेल से बात की और अध्याय 12 में यह बताया कि आश्चर्यों का अंत कब होगा। प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में वही वो है जिसने सिंह की तरह गर्जना की, क्योंकि वहां उसे यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
और प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, रो मत, देखो यहूदा के गोत्र का सिंह दाऊद की जड़ ने पुस्तक खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने में विजय पाई है। और मैंने देखा और देखो सिंहासन के मध्य में और 4 प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेमना खड़ा था, मानो वो वध किया गया हो। उसके 7 सींग और 7 आँखें थीं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जिन्हें सारी पृथ्वी में भेजा गया है। और वो आया और उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। प्रकाशित वाक्य 5:5-3।
यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में मसीह वो मेमना है जो 7 मोहरों से मुहरबंद उस पुस्तक को खोलने के लिए विजयी ठहरा। चाहे वो दानियेल की पुस्तक में जल के ऊपर चलते हुए दिखाई देता हो या प्रकाशित वाक्य में एक पाँव समुद्र पर और दूसरा पृथ्वी पर रखे हुए हो, इनमें से प्रत्येक भविष्यद्वाणीय चित्रण भविष्यद्वाणीय समय से संबंधित है। और यहूदा के गोत्र का सिंह होकर मसीह अपने वचन को मुहर बंद भी करता है और उसे खोलता भी है। जैसे उसने दानियेल की पुस्तक को मुहर बंद किया, वैसे ही उसने प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में 7 मुहों को भी मुहर बंद किया।
यूहन्ना को निर्देश देने वाला वो बलवान स्वर्गदूत कोई और नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह थे। समुद्र पर अपना दाहिना पैर और सूखी भूमि पर अपना बायां पैर रखना ये दर्शाता है कि शैतान के साथ महान संघर्ष के समापन दृश्यों में वो कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। ये स्थिति संपूर्ण पृथ्वी पर उनके सर्वोच्च सामर्थ्य और अधिकार का द्योतक है। ये संघर्ष युग दर युग अधिक प्रबल और अधिक दृढ़ होता गया था और ऐसा ही होता रहेगा उन समापन दृश्यों तक, जब अंधकार की शक्तियों की कुशल चालें अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाएंगी। शैतान दुष्ट मनुष्यों के साथ मिलकर समूचे संसार और उन कलीसियाओं को धोखा देगा जो सत्य का प्रेम स्वीकार नहीं करती। परंतु वो बलवान स्वर्गदूत ध्यान की मांग करता है, वो ऊंचे स्वर में पुकारता है, वो अपनी वाणी की सामर्थ्य और अधिकार उन लोगों को दिखाने वाला है जिन्होंने सत्य का विरोध करने के लिए शैतान के साथ हाथ मिला लिया है। इन 7 गर्जनों के अपनी वाणी उच्चारित करने के बाद लघु पुस्तक के विषय में दानियल की भांति यूहन्ना को याग मिलती है। जो बातें उन 7 गर्जनों ने कही हैं उन्हें मुहर बंद कर दे। ये भावी घटनाओं से संबंधित हैं जो अपने क्रम में प्रकट होंगी। दिनों के अंत में दानियल अपने भाग के लिए खड़ा होगा। यूहन्ना लघु पुस्तक को मुहर खुली हुई देखता है। तब संसार को दिए जाने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्वर्गदूतों के संदेशों में दानियल की भविष्यवाणियों का उचित स्थान होता है। लघु पुस्तक की मुहर का खुलना समय संबंधी संदेश था। दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें एक हैं। एक भविष्यवाणी है, दूसरी प्रकटीकरण है। एक मुहरबंद पुस्तक है, दूसरी खुली हुई पुस्तक है। यूहन्ना ने वे भेद सुने जो गर्जनाओं ने उच्चारित किए, परंतु उसे उन्हें न लिखने की आज्ञा दी गई। यूहन्ना को दिया गया विशेष प्रकाश जो सात गर्जनाओं में व्यक्त किया गया था, उन घटनाओं का निरूपण था जो प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के संदेशों के अंतर्गत घटित होने वाली थीं। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री, खंड 7, पृष्ठ 971।
मसीह, जिन्हें पालमों के रूप में अध्याय 8 और 12 में जल के ऊपर दिखाए गए उस मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वही अपने हाथ में छोटी पुस्तक लिए शक्तिशाली स्वर्गदूत भी है। वह यहूदा के गोत्र का सिंह है जो अपने वचन पर मुहर लगाता और उसे खोलता है, और वही गब्रियल को आज्ञा देता है, क्योंकि वही प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल।
फिर भी महादूत मुंकाएल ने, जब उसने शैतान के साथ मूसा के शरीर के विषय में विवाद किया, तो उसके विरुद्ध निंदात्मक दोषारोपण करने का साहस नहीं किया, पर कहा, प्रभु तुझे धिक्कारे। यहूदा 1:9।
मिकाएल मसीह का नाम है, और ये नाम दर्शाता है कि वो केवल स्वर्गदूतों का सेनापति ही नहीं है, बल्कि वही है जिसके पास पुनर्जीवित करने की सामर्थ्य भी है। मिकाएल नाम का अर्थ है, परमेश्वर के समान कौन है। जब नबूकदनेस्सर ने भट्टी में तीन धर्मनिष्ठों के साथ परमेश्वर के पुत्र के समान एक को देखा, तो उसने मिकाएल को देखा, और मुख्य स्वर्गदूत मिकाएल परमेश्वर की प्रजा का वो राजकुमार भी है जिसके विरोध में मूर्ति पूजक रोम के छोटे सींग ने क्रूस पर अपने आप को बड़ा ठहराया। दानियल अध्याय 8 पद 11 की पूर्ति में,
परंतु मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो सत्य की पुस्तक में लिखा है, और इन बातों में मेरे साथ ठहरने वाला कोई नहीं, केवल तुम्हारा प्रधान मिकाएल। दानियल 10 टिक्योच।
माइकल ही वो है जो स्वर्गदूतों को आदेश देता है, मृतकों को पुनर्जीवित करता है, और ये तय करता है कि परिवीक्षा कब समाप्त होती है।
और उसी समय मिकाएल, जो तेरी प्रजा के पुत्रों के लिए खड़ा है, वो महान प्रधान होकर उठ खड़ा होगा, और संकट का ऐसा समय होगा जो जाति के होने से अब तक नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसी समय तक। और उसी समय तेरी प्रजा में से हर एक जिसका नाम पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाएगा, उद्धार पाएगा। जब ये संकट का समय आएगा, तब हर एक मामले का निर्णय हो चुका होगा। अब न कोई अनुग्रह काल रहेगा, न ही पश्चाताप न करने वालों के लिए दया। जीवित परमेश्वर की मुहर उसकी प्रजा पर है। ये छोटा सा अवशेष जो अजगर की सेनाओं द्वारा संगठित पृथ्वी की शक्तियों के साथ होने वाले घातक संघर्ष में अपने को बचाने में असमर्थ है, परमेश्वर को ही अपनी रक्षा बना लेते हैं। सर्वोच्च सांसारिक सत्ता द्वारा ये फरमान पारित हो चुका है कि वे पशु की आराधना करें और उत्पीड़न और मृत्यु के दंड के अधीन उसका चिन्ह ग्रहण करें। अब परमेश्वर अपनी प्रजा की सहायता करे, क्योंकि फिर उसके सहारे के बिना ऐसे भयानक संघर्ष में वे क्या कर सकेंगे। टेस्टिमोनीज, खंड 5, 212।
अंतिम रहस्य, जिसे यहूदा के गोत्र का सिंह खोलता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, और इसमें ये भी शामिल है कि उसके भविष्य सूचक वचन के प्रत्येक तत्व की परिकल्पना और संरचना पर उसी का नियंत्रण है। सन के वस्त्र पहने हुए वो पुरुष जो जल पर खड़ा है, जो अपना हाथ उठाता है और उसकी शपथ खाता है जो युगानुयुग जीवित है, और जो सिंह के समान पुकारता है, जिससे सात गर्जन अपनी वाणी उच्चारित करती हैं, वही दानियल की पुस्तक को मुहर बंद करता है और प्रकाशित वाक्य की सात गर्जनों को भी मुहर बंद करता है। वही सात मुहर को से मुहर बंद पुस्तक की मुहरें खोलता है। वही पुनरुत्थान करने की शक्ति रखता है, और वही महान प्रधान है जो उठ खड़ा होता है और अनुग्रह काल की समाप्ति की घोषणा करता है। जब पलमोनी ने गब्रियल को ये आज्ञा दी कि वो दानियल को समलहो दर्शन चमचा दे, तो उसका अभिप्राय ठीक यही था। उसने गैब्रियल को शाजोन दर्शन, डैनियल को समझाने का आदेश नहीं दिया। शजोन दर्शन डैनियल अध्याय 8 के पद 1 से 12 में बाइबल की भविष्यवाणी के राजाओं का दर्शन है, और यही दर्शन पद तारे में अवधि से संबंधित प्रश्न में भी संदर्भित है। यह दर्शन कब तक रहेगा? शजोन दर्शन उन दैनिक पैगनिज्म और अधर्म पपेलिज्म की उजाड़ करने वाली शक्तियों से संबंधित है जो पवित्र स्थान और सेना को रौन डालती है।
तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, और दूसरे पवित्र जन ने उस विशेष पवित्र जन से जो बोल रहा था कहा, दैनिक बलिदान और उजाड़ने वाले अपराध जिसके कारण पवित्र स्थान और से बन के ना दोनों पैरों तले रौंदे जाते हैं के विषय में ये दर्शन कब तक रहेगा? दानियल 8:13।
मसीह पलोनी अद्भुत गणक के रूप में सह पूछा जाता है कि कब तक छाजोन दर्शन ठहरेगा, और वो उत्तर देता है 2300 दिनों तक, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। दानियल तब उस छाजोन दर्शन को समझना चाहता है जो नित्य बलिदान और उजाड़ का अपराध ताकि पवित्र स्थान और सेना दोनों को पान तले रौंदे जाने के लिए दे दिया जाए से संबंधित है। परंतु गबरें को ये आज्ञा दी जाती है कि वो दानियल को मारे दर्शन समझाए। परमेश्वर के वचन में प्रत्येक तथ्य का अपना महत्व है। मारे दर्शन संध्या और प्रातः के उस दर्शन का नाम है जिसका उल्लेख 26वीं आयत में है,
और जो सांझ और भोर का दर्शन बताया गया है वो सत्य है, इसलिए उस दर्शन को बंद कर दे क्योंकि ये बहुत दिनों के लिए है। दानियल 8:6।
उस पद में दर्शन शब्द दो बार आया है। पहला उल्लेख मेरे दर्शन का है और दूसरा छाजोन दर्शन का। मेरे दर्शन शामे और सुभाय का दर्शन है। शामे और सुभाय का इब्रानी प्रयोग बाइबल में अक्सर मिलता है, और इसे हमेशा शामे और सुभाय ही अनुवादित किया जाता है, जैसा कि 26वें पद में है। बाइबल में केवल एक ही स्थान पर इसे छामे और सुभाय से भिन्न रूप में अनुवादित किया गया है, और वो 14वां पद है जहां इसका अनुवाद केवल दिन किया गया है। 14वां पद का वास्तविक इब्रानी पाठ इस प्रकार होगा, 2300 शामे और सुभाय तक। वह पद जो एडवेंटिज्म का केंद्रीय स्तंभ है, परमेश्वर के वचन में एकमात्र ऐसा पद है जहां संध्या और प्रभात को सीधे दिन कहा गया है। प्रत्येक तथ्य का अपना महत्व होता है, और यदि और कुछ नहीं तो ये स्पष्ट है कि पालमोनी ने जानबूझकर उस पद पर जोर दिया था। उन्होंने किंग जेम्स बाइबल के अनुवादकों के मनों को इस प्रकार निर्देशित किया कि वे उस वाक्यांश को उसके वचन में जैसा सदैव लिखा जाता है उससे भिन्न ढंग से लिखें। इस तथ्य से जो निष्कर्ष निकाला जाना है वह ये है कि जब गैब्रियल से दानियल को मारह दर्शन समझाने को कहा जाता है, तो उससे दानियल को 1844 के प्रकट होने का दर्शन समझाने के लिए कहा जा रहा होता है, न कि पवित्र स्थान और सेना को रौंदे जाने से संबंधित छाजोन दर्शन। संध्या और प्रातः का दर्शन उस प्रकट होने के बारे में है जो 22 अक्टूबर 1886 को पवित्र स्थान की शुद्धि आरंभ होने पर हुआ। 22 अक्टूबर 1886 को हुए उस प्रकट होने का दर्शन पवित्र स्थान को रौंदे जाने के बारे में नहीं, बल्कि पवित्र स्थान की शुद्धि के बारे में है। क्या उस तिथि को कोई भविष्य सूचक प्रकट होना हुआ था?
हमारे महायाजक के रूप में पवित्र स्थान के शुद्धिकरण के लिए मसीह का परम पवित्र स्थान में आना, जैसा कि दानियल 8 के पड़पोड़ में दृष्टिगोचर कराया गया है, मनुष्य के पुत्र का पुरातन कालीन के पास आना, जैसा कि दानियल 7:13 में प्रस्तुत किया गया है, और प्रभु का अपने मंदिर में आना, जिसकी भविष्यवाणी मलाकी ने की थी, ये सब एक ही घटना के वर्णन है, और यही बात उस दूल्हे के विवाह में आने के द्वारा भी निरूपित की गई है, जिसका वर्णन मसीह ने मत्ती 5 में 10 कुमारियों के दृष्टांत में किया है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 4:6।
गैब्रियल को ये निर्देश दिया गया था कि वो दानियल को 22 अक्टूबर 1844 को मसीह के अपने नमेंद्र में होने वाले भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट होने को समझाए। इसी कारण गैब्रियल ने दानियल को 22 अक्टूबर 1844 की तिथि के लिए एक दूसरा गवाह प्रदान किया, क्योंकि गैब्रियल ने हर उस बाइबल लेखक का मार्गदर्शन किया जिसने किसी न किसी रूप में उस बाइबली सिद्धांत को लिखा था जो बताता है कि सत्य दो गवाहों की गवाही पर स्थापित होता है। यदि गैब्रियल को दानियेल को 22 अक्टूबर 1844 समझाना था तो प्रकट होने का दर्शन स्थापित करने के लिए उसे एक दूसरे गवाह की आवश्यकता होती। गैब्रियल अपना कार्य सबसे पहले दानियेल की छाजोन दर्शन को समझने की इच्छा को संबोधित करके शुरू करता है और वो ऐसा ये पहचान कर करता है कि छाजोन दर्शन वही दर्शन है जो 1798 में टाइम ऑफ द एंड पर समाप्त होता है।
और मैंने उलाई के किनारों के बीच से एक मनुष्य की आवाज सुनी जिसने पुकार कर कहा, गैब्रियल, इस मनुष्य को ये दर्शन समझा दे। तब वो जहां मैं खड़ा था उसके निकट आया और जब वो आया तो मैं डर गया और मुख के बल गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, समझ ले, क्योंकि ये दर्शन अंत के समय के लिए है। दानियेल 8:16 सत्र।
पिछले पद में जो दर्शन है अर्थात अंत के समय का, वो छाजोन दर्शन है और दानियेल की पुस्तक में अंत का समय 195 है। यही वो दर्शन है जिसे दानियेल समझना चाहता था, पर ये वो दर्शन नहीं था जिसे दानियेल को समझाने के लिए गैब्रियल को कहा गया था। उसके लिए गैब्रियल दूसरी गवाही देने वाला है।
वो वहां आ पहुंचा जहां खड़ा था और जब वो आया तो मैं डर गया और मुंह के बल गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, समझ, क्योंकि ये दर्शन अंत समय के लिए है। जब वो मुझसे बातें कर रहा था तब मैं भूमि की ओर मुंह किए गहरी नींद में पड़ गया, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। फिर उसने कहा, देख, मैं तुझे बता दूंगा कि क्रोध के अंत के समय क्या होगा, क्योंकि नियत समय पर अंत होगा। दानियेल 8:17-19।
गैब्रियल अपना दायित्व इस प्रकार आरंभ करते हैं कि वे दानियेल से देखो कहते हैं, अर्थात वे उसे अगले तथ्य पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। अगला तथ्य ये है कि लेव्र व्यवस्था 26:2-7 समय में से जो अंतिम कोप है वह 1844 में समाप्त होता है। ये अंतिम कोप सीधे तौर पर एक समय भविष्यवाणी के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि उसके समाप्त होने के लिए एक नियत समय ठहराया गया है। कोप अवश्य ही एक समयावधि का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसको अंत के लिए एक नियत समय है। यदि कोप मात्र समय का एक बिंदु होता तो उसका कोई अंत न होता, वह केवल वह क्षण होता जब वह घटित हुआ। क्रोध का एक निर्धारित अंत बिंदु था, इसलिए वो एक समयावधि के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। उस समयावधि को अंतिम क्रोध के रूप में दर्शाया गया है। यदि कोई अंतिम है तो एक प्रथम भी होना चाहिए। प्रथम क्रोध की पहचान दानियेल के 11वें अध्याय में की गई है और वहां भी वो एक समयावधि ही है, क्योंकि पोप तंत्र क्रोध के अंत तक कार्य करता और समृद्ध होता रहने वाला था।
और समझदारों में से कुछ गिरेंगे ताकि उन्हें परखा जाए, शुद्ध किया जाए और उजला किया जाए अंत के समय तक, क्योंकि वो अभी भी एक ठहराए हुए समय के लिए है और राजा अपनी इच्छा के अनुसार करेगा और वो अपने को ऊंचा करेगा और हर देवता से ऊपर अपने को बड़ा ठहराएगा और देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अद्भुत बातें कहेगा और तब तक सफल रहेगा जब तक रोष पूरा ना हो जाए, क्योंकि जो ठहराया गया है वही किया जाएगा। दानियेल 11:35-36।
इन दो पदों में विषय वो राजा है जो अपनी इच्छा के अनुसार करता है और स्वयं को ऊंचा उठाता है। पद 36 वही पद है जिसका भावार्थ पौलुस देता है, जब वो पाप का मनुष्य की पहचान करता है जो परमेश्वर के मंदिर में बैठा है और स्वयं को परमेश्वर ठहराता है। अंधकार युग का उत्पीड़न वर्ष 533-598 तक पद 35 में पहचाना गया है और वो अंत के समय तक जारी रहता है जो 37-93 था, जो नियत समय था। तब पद 36 ये बताता है कि पोप तंत्र फलता फूलता है तब तत् रहेगा जब तक रोष पूरा न हो जाए। ये पद बताता है कि पोप तंत्र 37-93 तक फलता फूलता रहा, उसी समय पहला रोष पूरा हो गया था। परमेश्वर के भविष्योक्त वचन ने ये ठहराया था कि पोप तंत्र 1260 वर्षों तक 37-93 तक बना रहेगा जो अंत का समय था। पहली इंडिग्नेशन 1798 में समाप्त हुई और द लास्ट इंडिग्नेशन 1844 में समाप्त हुई। दोनों इंडिग्नेशन को समय अवधि के रूप में प्रस्तुत किया गया जिनका विशिष्ट समापन था। इस प्रकार दोनों की पहचान समय संबंधी भविष्यवाणियों के रूप में होती है। पालमोनी ने गैब्रियल को आदेश दिया कि वो डानियेल को संध्याओं और प्रातःकालो दिन का रूप का दर्शन मारे समझाए, जिसने डक्ट ऑफ सिक्स्थ वेल्ड अट्वान 7844 की पहचान की और उसने यह इस तिथि के लिए दूसरी गवाही देकर किया।
13वीं आयत का चाजोन दर्शन, जिसे दानियेल समझना चाहता था, पैरों तले रौंदे जाने का वो दर्शन था जिसका समापन 1798 में अंत के समय पर हुआ। 14वीं आयत का मारे दर्शन का समापन 22 अक्टूबर 1840 को परम पवित्र स्थान में मसीह के प्रकट होने के साथ हुआ, जो 2300 वर्षों की समय भविष्यवाणी की पूर्ति थी और साथ ही 2520 वर्षों की समय भविष्यवाणी की भी पूर्ति थी। इन दोनों समय भविष्यवाणियों का निरूपण हबक्कुक की पवित्र तालिकाओं पर किया गया है, जिन्हें बहन व्हाइट प्रभु के हाथ से निर्देशित बताती है और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
हमें बहुत से पाठ सीखने हैं और बहुत से पाठ त्यागने भी हैं। केवल परमेश्वर और स्वर्ग ही अभ्रांत हैं, जो ये सोचते हैं कि उन्हें कभी किसी प्रिय मत को छोड़ना नहीं पड़ेगा, कभी अपना मत बदलने का अवसर नहीं आएगा, वे निराश होंगे। जब तक हम अपने विचारों और मतों पर दृढ़ता से अड़े रहते हैं, तब तक हम वो एकता नहीं पा सकते जिसके लिए मसीह ने प्रार्थना की थी। रिव्यू एंड हेरल्ड, जुलाई 26, 1892।